أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فإنه مع الصابرين خير مبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم عرفان کے حوالے سے ہو رہی ہے اور آج اس کی دوسری نشست اور کلاس جو ہے وہ عرفان اور اسلام کے حوالے سے آگے بڑھائیں گے. کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں تین نظریات تھے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ مختلف فقہا اور اسلامی اسکالرز کہتے ہیں کہ عوام فہمی کے لیے اور عوام کو زندہ دینے کے لیے عرفاء نے ایک رسم ایجاد کر دی ہے. اسلام اچھا ہے لیکن عرفاء کی کوئی جو تاریخ ہے وہ کوئی اسلامی تاریخ نہیں ہے. دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ روشن فکر اور متجدد افراد کا ہے جو عرفاء کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن پہلی اور دوسری گروہ میں فرق کیا ہے؟ پہلا گروہ اسلام کو اچھا تصور کرتا ہے، عرفاء کو مخالف تصور کرتا ہے. دوسرے لوگ خود اسلام کے مخالف ہیں، وہ کہتا ہے اسلام ہی اس قابل نہیں ہے، روشن فکر افراد. اور تیسرا گروہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کسی طرف مائل نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اچھا ہے، عرفاء بھی اگر اچھی نیت رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیخ مہتدی نے اس تیسری روش کو اپنایا ہے، تیسرے نظریے کو اپنایا ہے کہ جس کے تحت ممکن ہے غلطیاں ہوں یا ممکن ہے کہیں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے، لیکن ان کی عرفاء کی نیت اچھی تھی، ان کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ بہت تعلیمات میں ہمیں عرفاء کی اور فقہا کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہے وہ شریعت، طریقت اور حقیقت. یہ آپ کو صوفیوں میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کو عرفاء میں بھی نظر آئے گا، اور یہ آپ کو علماء اصول اور اسلام کی اسٹڈی کرنے والے علماء میں بھی نظر آئے گا. یہ تین اسٹیجز ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف جزی اختلافات پائے جاتے ہیں. کلی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے. شریعت اپنی جگہ پر ایک معنی ہے، طریقت اپنی جگہ پہ ایک معنی ہے، اور حقیقت اپنی جگہ پہ ایک معنی ہے. یعنی شریعت سے مرادی کیا ہے؟ یعنی شریعت وہ خاص عبادات کی پابندی، اصولوں کی پابندی کا نام شریعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور نبی اکرم اور رحمۃ اللہ علیہ السلام اس کی ترویج کرنے والے ہیں. طریقت یعنی وہ راستہ کہ جس سے گزرا جائے اور اس سے گزر کر حقیقت تک پہنچا جائے. یہ تین چیزیں جو کوئی بنیادی چیز اور بنیادی اختلاف نہیں ہیں. جو جزی اختلاف فقہا اور عرفاء میں موجود ہے وہ جس میں دونوں فی الحال متفق القول ہیں شریعت کے بارے میں کہ شریعت کے پیچھے مسائل موجود ہیں، مسائل یعنی مصلحت موجود ہے. انشاءاللہ علم اصول میں پڑھ رہے ہیں آپ نہیں؟ علم اصول میں کیا ہے؟ مسائل حالت ثبوت اور اس بات عالم جال، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسائل موجود ہوتے ہیں، مصلحت موجود ہے، یا مصلحت شدیدہ ہوتی ہے یا غیر شدیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مصلحت شدیدہ ہے تو وہ چیز حرام ہوگی یا واجب ہوگی، اگر مصلحت غیر شدیدہ ہے تو مکروہ ہوگی یا مستحب، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے پیچھے ایک مصلحت، یہ مصلحت کون اس کا تعین کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ شارع ہے، وہ شریعت بنانے والا ہے، وہ در حقیقت اسلام کی بنیادی تعلیمات کو وضع کرنے والا ہے. اس نے کسی کے مشورے سے یہ چیز نہیں کی. دونوں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی جو شریعت ہے اس کے پیچھے مصلحتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پر فقہا یہ کہتے ہیں مصلحت روح شریعت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ان مصلحتوں تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے شدیدہ یا غیر شدیدہ، آپ کے لیے لازم ضروری ہے کہ آپ شریعت کا عمل کریں. اور عرفاء بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مصلحت مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ منازل اور مراحل کے مانند ہیں جو ہمیں بتدریج کہاں اللہ تک لے جاتے ہیں. यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी राहें हैं वो सब अल्लाह तक ले जाती हैं, ठीक है ना। जहाँ पे यानी शरीयत से मुबर्रा होने की बात नहीं कर रहे, शरीयत से दूर होने की बात नहीं कर रहे, और अब वो कहते हैं कि शरीयत अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अलावा इंसान जो है बहुत सी तरीकों से अल्लाह तक पहुँच सकता है। इसलिए हदीस में कि अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते उतने ही हैं जितने इंसानों के नफूस। हर शख्स अपनी सोच और अपनी, मैं आपको और आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते कि मैं आपकी सोच के मुताबिक अल्लाह तक पहुंचूं, आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते मैं आपकी मार्फत की इत्तबा करूं या मैं आपको ज़बरदस्ती करूं कि आप मेरी मार्फत को कबूल करें और उसके मुताबिक अल्लाह को पहचाने। अल्लाह को पहचानने के उतने ही तरीके जितने नफ्सों की तादाद, इंसानों की तादाद है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए और रफाई कहते हैं। तो पहली चीज से योग शरीयत में दोनों मुतफ़क़ुल क़ौल है कि मसलहत है। फुकहा ये कहते हैं कि मसलहत जो है वही शरीयत है, और इन मसलहतों तक पहुंचने के लिए शरीयत पर अमल पैरा होना लाजमी और ज़रूरी है। शरीयत को अगर छोड़ देंगे आप मसलहतों तक नहीं पहुंचेंगे। मसलन एक वाजिब है, उसमें मसलहत शदीदा है, यानी आपको ये काम करना चाहिए, हतमन हतमन लाजमन करना चाहिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस नमाज से जो फायदा रूहानी या जिस्मानी या मादी या गैर मादी आपको मिलेगा आप उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। आप पर रोजा वाजिब है, फर्द है, लाजिम और जरूरी है, मस्ट है आपके लिए, वरना फ्यूचर बस्ट है, नहीं ठीक है ना। नहीं रखेंगे तो वो जो रूहानी तब्दीली आने वाली है, जो तरबियत होने वाली है, आप तक नहीं पहुंचेगी। या बरक्स ले लें, शदीदा को मनफी अंदाज से ले लें। मसलन आपको शुरब खम से, शराब नोशी से परहेज करना चाहिए, आपको फला हराम अमर से परहेज करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर इसके बुरे असरात आ जाएंगे, ये फुका कहते हैं। और रफा क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये ठीक है, क्या तस्लीम करते हैं, लेकिन ये मजमून जितने भी राय हैं शरीयत के साथ साथ ये हमें कहाँ तक ले जाने वाली हैं, ये हमें अल्लाह तक ले जाने वाली है। दूसरी चीज तरीकत है। तरीकत यानी वो रास्ता कि जिस पे चला जाए। और फुकहा ये कहते हैं कि जो तरीकत है वो एक रास्ता है, आपने तय करना है ताकि आप हकीकत तक पहुंचें। और उरफा इस तरीकत के बारे में क्या कहते हैं, उरफा ये कहते हैं कि शरीयत का लिबास तरीकत है, और तरीकत का लिबास जो है वो हकीकत है। यानी आप शरीयत पर अमल करेंगे तो तरीकत तक पहुंचेंगे, तरीकत पर अमल करेंगे तो हकीकत तक पहुंचेंगे। तीनों एक ही जगह, यानी तीनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इधर से छलांग लगा ली उधर पहुंच गए, आप शरीयत लिया और तरीकत को छोड़ दिया। तरीकत क्या है, तरीकत वो तरीका है, वो वे है, वो लाइफ स्टाइल है कि जिसके मुताबिक जो आप जिंदगी गुजारते हैं, आसान अल्फाज में। लिहाजा उरफा जो है ये कहते हैं कि शरीयत का बातिन एक रास्ता है, शरीयत का एक जाहिर है नमाज है, और नमाज का एक बातिन है रोज़ा है, रोजे का एक बातिन है। शरीयत के जितने भी अहकाम वो सब क्या हैं, वो एक रास्ता है, ठीक है ना, और उसका बातिन क्या है वो तरीकत कहलाता है। बस इन सब का खत्म कहाँ होना है, हकीकत पे होना है। नमाज पढ़ेंगे हकीकत तक पहुंचे, रोजा रखें हकीकत तक पहुंचे, झूठ से इतना करें हकीकत तक पहुंचे, वाजिबात की पाबंदी करें हकीकत तक पहुंचेंगे, हराम उमूर से इज्तनाब करेंगे, पहलू तही करेंगे, दामन बचाएंगे, तकवा अख्तियार करेंगे हकीकत तक पहुंचेंगे। पायान राह क्या है, आखिरी मंजिल क्या, हकीकत तक रसाई है, ठीक है। यहां तक भी कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उस चीज को जो अपनी टेक्निकल जबान में उरफा इस्तेमाल करते हैं वो क्या है कि शरीयत वसीला या गलाफ है तरीकत के लिए, और तरीका वसीला या गलाफ है हकीकत के लिए। जब तक कि आप एक चीज को क्रॉस नहीं करेंगे आप दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे।
आप जो मुझे जो समझ में जाएंगे तरीका शरीयत जो गलाफ है तरीकत के लिए, और तरीकत रास्ता है, तरीकत पहुंचाती है हकीकत तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि तरीकत शरीयत के मुताबिक चलेगी।
बिल्कुल,
यानी उसके अंदर शरीयत से मुखालफत
नहीं है, मुखालफत नहीं है।
अगर कहीं शरीयत से मुखालफत हो रही हो तो वो तरीकत नहीं,
वो नहीं दुरुस्त नहीं, या उनकी अपनी जेल से कोई चीज बनाई भी निकाली भी है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। शहीद मुतहरी इसी चीज को बयान कर रहे हैं कि मुमकिन है इनकी तालीमात में इनकी कहीं पर हमें कोई गलती नजर आए या कोई आरिफ बहका हुआ नजर आए या सूफियत हमें नजर आए मिसाल के तौर, वो आगे जब आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या है कहते हैं हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन मजमून और रफा नेक सीरत से नेक नीयत से इस्लाम से मावरा कोई चीज नहीं चाहते थे। इस्लाम के ताबे रहकर शरीयत के ताबे रहकर दर हकीकत वो अपनी तालीमात को फॉलो करना चाहते थे। मुमकिन है उनका कोई लिबास हो ठीक है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुमकिन है उनकी कोई खास अंदाज हो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो फिर हम उसको अर्ज करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इख्तलाफ है, कहाँ कहाँ खता हुई हैं, कहाँ कहाँ वो दुरुस्त हरकत करते रहे। वाज़ेह बस वाज़ेह हो गई। अब आते हैं जब शरीयत पे गुफ्तगू कर ली तरीका पे गुफ्तगू कर ली, अब आते हैं हकीकत। हकीकत से पहले फुकहा वो ये कहते हैं कि इस्लाम की जो शरीयत है कि जिसके बाद तरीकत और रास्ता आता है, यानी उस तरीकत क्या है फुकहा की नज़र में उस बंदगी का नाम है कि जो आप अमल अंजाम दें। नमाज पढ़ रहे हैं शरीयत पे अमल है बंदगी कहलाएगी इसको तरीकत कहेंगे, रोज़ा रखा बंदगी कहलाएगी तरीकत कहेंगे, हराम उमूर से इज्तनाब किया हराम चीज़ों से बचे बंदगी कहलाएगी इसको तरीकत कहेंगे। कहते हैं शरीयत तीन इसकी बुनियादी तालीमात है। इस्लाम ने तीन शरीयत को तीन हिस्सों में तकसीम किया है, यानी हकीकत इस्लाम जो है वो ये है कि इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली चीज़ अकायद है, दूसरी चीज़ अखलाक है और तीसरी चीज़ फ़िक्ही अहकाम है जो इंसान के ज़ाहिर बातिन और उसकी अपनी ज़ाहिर और बातिन दुनिया से बदल जाए। फ़िक्ही अहकाम ठीक है, ये तीनों अहकाम अलग है, अकायद का अपना किरदार है, अहकाम का अपना किरदार है, अखलाक का अपना किरदार है। अकायद बुनियाद बनती है, अकायद बेस बनती है किसी भी अमल के लिए। अब इसमें हम जब तौहीद के लिए जाएंगे, तौहीद परस्ती जो है तौहीद के नज़रिए का इत्तबा जो है वो हमें क्या करता है, हमें तमाम आमाल तो मुवाहिद बनाता है, तौहीद परस्त बनाता है। मुमकिन नहीं कि मैं एक खुदा को मानूँ लेकिन मेरे तमाम आमाल का मकसद जो है वो क्या है अलग अलग हो, मेरे तमाम आमाल को इन नसरा वो नसुखी व माहिया या वो माजी जिंदगी और सब चीज़ें क्या है उसके किस टाइम लगे। उस्ताद मोहसिन फराजी बड़े खूबसूरत मिसाल देते हैं कि ये जो मोहर ये जो तमाम कामों और तौहीद के एक मोहर होनी चाहिए, आप किसी बड़े होटल जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि प्लेट आ रही है उस पर स्टैम्प लगी हुई है,
लगी हुई
ठीक है, कप आ रहा है चमचा आ रहा है बड़ी प्लेट आ रही है वाटर प्लेट आ रही है स्वीट डिश आ रही है सब पे ये इस पर एक मोहर लगी हुई है। इसी तरह हर मोमिन के हर आमाल पर तौहीद की एक मोहर लगी हुई चाहिए, यानी उसके तमाम आमाल का मकसद क्या है खुद खुदा और खुदाइयत होनी चाहिए, खुदा का कुल का उसूल होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और बोलते हैं तौहीद क्या है, तौहीद खुदा को एक मानना है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में भी अपने तमाम आमाल को एक जहत हूँ एक डायरेक्शन हूँ कि तौहीद मेरा खाना खुदा के लिए, मेरा सोना खुदा का लिए, मेरी शादी खुदा के लिए, मेरा इल्म खुदा के लिए, मेरा इस्तराहत खुदा के लिए, तो मैं सही माने में मुवाहिद इंसान कहलाऊंगा, मेरे तमाम कामों का मकसद और मरकज जो खुदा हो। लेकिन मैं नमाज तो खुदा के लिए पढ़ूँ लेकिन कमाऊँ किसी और नियत से, सोऊँ किसी और नियत से, बीवी बच्चों के बाद आऊँ किसी और फिक्र ख्याल से, ये खुदा परस्त नहीं है। खुदा परस्त वो जिसके तमाम कामों की बुनियाद। तो अकायद क्या है, अकायद बुनियाद बनते हैं, अकायद बेस होते हैं जिन पर आपके अमल की बुनियाद खड़ी होती है। दूसरी चीज़ के अहकाम अखलाक है, अखलाक दर हकीकत वो रूहानी ताकत है कि जो आपको आपके अमाल की इस्लाह के लिए आमालो तैयार करती है कि आपका बिहेवियर आपका अखलाक आपका रवैया आपका सलूक आपका देखना आपका बोलना आपका सुनना आपका बैठना आपका निश्चित बरखास्त आपकी ज़िंदगी का स्टाइल लाइफ स्टाइल एक महज़ब तरीके से होना चाहिए। किसी को अखलाक कहा जाता है जाहिर में भी बातिन में भी, मतलब मैं किसी के सामने टांग नहीं फैलाऊँ ये गलत अखलाक ही है। उसी तरीके से बातिन के भी अखलाक हैं, एक बातिन अखलाक भी हैं, मैं बुरी नीयत नहीं रखूँ, मैं सुएज़ा नहीं रखूँ, मैं गीबत नहीं करूँ, मैं दिल में बुरा नहीं चाहूँ, मैं नफरत नहीं रखूँ, ये सब क्या है? ये सब बातनी तौर पर मुझे अखलाक से मुजयन कर। अखलाक क्या है? मुजयन कर। आयतुल्लाह जवादार ने कहा कि अखलाक के दो मरहले हैं, एक तहलिया है एक तखलिया है। तहलिया क्या? यानी हिलियत देना, जीनत देना। तखलिया क्या है? खाली करना। कहते हैं कि इस्लाम में अखलाक के दो बुनियादी पहलू, तखलिया भी है और तहलिया भी है, लेकिन तखलिया मुकद्दम है तहलिया पर। अपने आप को रज़ाइल अखलाकी बुरी सिफात से खाली करना मुकद्दम है किस चीज़ पर? अपने आप को अखलाकी सिफात से मुज़य्यन और ज़ीनत देने पर। मिसाल, अगर ये मिसाल के तौर पर एक गिलास है, एक ज़र्ब है, अगर ये गंदा नजिस है, ठीक है ना, इसमें पानी नहीं पिया जा सकता, ये काबिल इस्तेफादा नहीं है, पहले इसको खाली किया जाए, इसको धोया जाए, उसके बाद इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। तो कहते हैं तखलिया क्या है? अपनी ज़ात, अपनी रूह को बुराइयों से खाली करना, और फिर उसके बाद वो बताती है तहलिया यानी जीनत की, मुजयन करने की। यही वजह है अक्सर उलमा ये अखलाक ही कहते थे कि इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि उससे कोई हराम काम ना हो, इसलिए कि हराम काम होने का जो नतीजा होगा वो खुद वाजिबात की अदायगी में रुकावट बन जाएगा। यही वजह है कि हराम उमूर की अदायगी इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात और मवाले ईजाद करते हैं, रुकावटें लेके आते हैं और सल्ब तौफीक का सबब बनते हैं। यही वजह है कि आप जितने भी उलमा अखलाक आप देखेंगे कि वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि आप जो है गुनाह ना करें, पहली कोशिश होनी गुनाह ना करें। ये खुद गुनाह ना करना जो है ये मुकदमा बनेगा राह हमवार करने के लिए, आप नेकियों की तरफ सफर करें। लेकिन यही गुनाह करना इस बात का सबब बनेगा कि जो आप वाजिब करना चाहते हैं उस वाजिब से आप हाथ उठा लें और वो फौत हो जाए, ज़्यादा हो जाए।
वही सवाल के ये कौन मुअय्यन करेगा कि जो काम आप तरीक़त में कर रहे हैं, जो काम तरीक़त में अंजाम दिया जा रहा है, या तरीक़त जो अंजाम जो तरीका अपनाया जा रहा है वो शरीयत के मुखालिफ है? नहीं, मिसाल के तौर पर मसलन बहुत ज़्यादा हम ये मशहूर है कि जो भी इस राह में आ जाता है, सैर वसलूक के राह में आ जाता है, उसको सबसे पहला काम ये करना होता है कि वो हर खाना नहीं खा सकता, वो अपने खाने को एक तो बहुत महदूद कर देता है, दूसरा वो खास खाने खा सकता है, बाहर तो खा ही नहीं सकता और घर में भी गोश्त वोश्त ये सारी चीज़ें नहीं खा सकता। तो खुदा के हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर रहा हूँ, शरीर को खाने का काम नहीं कर रहा हूँ, ये कौन ये सब चीज़ें जो तक चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें
हराम करना नहीं कह लेंगे इसको, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वर्ल्ड क्लास रेसलर जिसका अपना एक वेट होता है, वज़न होता है, आलमी मुकाबले जो होते हैं, मसलन इतने किलोग्राम का मसलन मुकाबला होगा, ठीक है ना, इतने किलोग्राम के जो रेसलर होंगे वो आपको मुकाबला करेंगे, तो ये रेसलर जो है इधर हाथ क्या करता है, ये अपनी गज़ा को कंट्रोल करता है, इसका वेट नहीं बढ़ जाएगा, अगर ये वेट बढ़ जाएगा घट जाएगा वो उस लेवल से हट जाएगा। इसका अपने आप को अपनी कुछ खाने की ख्वाहिशा पर कंट्रोल करना क्या हराम है? नहीं,
नहीं
एक मकसद तक पहुंचने के लिए ना। उसी तरीके से जो रफा हैं वो ये कहते हैं और ये अखलाक इसकी तय करता है कि हर गज़ा आप नहीं खाएं, हर गज़ा का अपना एक असर है, अगर आप नजीस चीज़ खाएंगे आपको ना भी पता हो तो उसका वजी असर होगा, उसका फिजिकली असर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। यानी अगर आपके बराबर में गुनाह अंजाम दिया जा रहा है, ठीक है कि आप उससे मुतमईन नहीं है, राजी नहीं है, लेकिन उस गुनाह का एक असर होगा आपके नफ्स पर, मतलब फिजिक्स का लॉ है, आप न भी चाहें फिर भी असर होगा, लिहाजा कोशिश ये करें कि उसको दूर करने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो शरीयत नकुल मनहर वो कौन सी नीयत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जायज़ की और तुम उसको हराम करार दे रहे हो? खुदा ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इंसान हो, लड़के में इस्तेमाल करो। ये जो खास एक एक एक्सरसाइज रियाजत होती है उसमें फिर हर गज़ा नहीं खाई जाती, क्योंकि हर गज़ा का अपना एक असर है, हर गज़ा जो है मतलब गोश्त इंसान बहुत ज़्यादा खाएगा उसके अपने असरात होंगे, इंसान बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाएगा उसके बहुत ज़्यादा असर होंगे। इसलिए आप देखें न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमेशा जाम गज़ा का प्लान देते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं जो मवाद गज़ाई का आपको बनावा बनाते हैं डाइटिंग के लिए, तो आपको एक जाम प्लान देते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी मखसूस तादाद होती है। तो जब अपने जिस्म की इजाफी चर्बी को फैलाने के लिए, सडोल बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए इंसान एक प्लान अमल करता है, तो उसको हम जब हराम नहीं कह सकते तो फिर हराम गजा और दूसरी चीज़ों से बचकर इंसान अगर अपनी रूह को खूबसूरत बनाए तो वो कैसे हराम कर
सकता है। चलिए एक और मिसाल देता हूँ मिसाल के तौर पर, अब क्योंकि मैं इस चीज़ से आशना हूँ, ये शरीयत के मुखालिफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इस वजह से आप सवाल
देखिए यहाँ पे आप है ना, आप यहाँ ज़ौकी देख रहे हैं, आपने कुछ अफराद को देखा है कि जो एक ख़ास शौक के तहत अमल कर रहे होते हैं, मुमकिन है उनका शौक हो वो इरफान ना हो वो इस्लाम ना हो।
नहीं वैसा तो बनाओ कुछ अशिया और उनकी नीयत भी है कि खुदा को हम यानी खुदा की रजा के लिए और क्या कहते हैं खुदा से मोहब्बत के लिए यानी मसरूफ हो जाते हैं। अब बाज़कार ऐसे होते हैं, हमें पता है कि भाई बाज़कार कैसे होते हैं, बाज़कार ऐसे होते हैं कि बाज़ खास जादू भी नहीं है कोई क्या कहते हैं सिर्फ भी नहीं है
सही
कुछ भी नहीं, बस ये है कि उससे कुछ एक खास काम आप उससे ले सकते हैं यानी वो भी दुनिया में। अब उसको आप कहते हैं शरीयत के मुखालिफ है, शरीयत के मुखालिफ नहीं, उसको आप किसी शरीयत कौन पॉइंट करेगा?
शरीयत के अंदर तो मुखालिफ है, बहुत से असकार हैं जिनको इस्लाम ने हुक्म दिया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपके आपके जहन में सवाल है ना, जो आपने जहाँ से रेज किया है सवाल, वो मैं समझ रहा हूँ कि आपने क्यों रेज किया है, वो आप शख्सियात को देख रहे हैं। मुमकिन है उन शख्सियात का अमल मुनसिफाना ना हो, मुमकिन है उन शख्सियात का अमल जामे ना हो। बहुत से लोग होते हैं उनको जो है वो एक ख़ास शौक होता है, उस शौक के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं। इरफान शौक ही नहीं है, इस्लाम शौक नहीं है, शौक नहीं है इस्लाम, हॉबी नहीं है इस्लाम, इरफान शौक नहीं है, शौक नहीं है, हॉबी नहीं है इस्लाम इरफान, समझ रहे मेरी बात आप? हम जो माशरे में देख रहे हैं ना, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये आप शख्सियत को देख रहे हैं, आप इरफान को नहीं देख रहे हैं। और चूंकि हम शख्सियत को देख इरफान को देख रहे हैं कि इरफान ऐसा है तो ये गलती है, पहले हम इरफान को देखें बाद में शख्सियत को देखें, तो फिर हमें सही इरफान अव्वल समझ में आएगा, सही उरफा समझ में आएंगे। अल कलाम यजुरुल कलाम बात से बात निकल गई इनका समझ में आया।
जी अगर जैसे आपने अखलाक के बारे में कहा कि एक अखलियात और दूसरा कौन सा
तहलियात,
यानी बाज़ोकात ऐसा होता है कि क्या ये दोनों यानी जमा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी मसलन कि एक इबादत गुजारनी हो पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ा कोई अपनी इबादत जो वो करता हो ठीक है इबादत ना करता हो, जिसके बावजूद फिर इसका जो अखलाक है ऐसा अखलाक है रसूलुल्लाह लोग नहीं उनसे बात नहीं करते
देखें।
और दूसरा कि एक बहुत बड़ा मुनाफा है
हम एक ही वक्त में हराम से बच भी रहे और इबादत भी कर रहे हैं, इसका वो जो सवाल में समझ गया आपने वो दर्ज के बाद रखें ताकि हम अपनी गुफ्तगू से खारिज ना हो, क्योंकि
यानी इखलाक नहीं है जरूरी है पहले हम अपने आप को गुनाहों से पाक करें फिर उसके बाद हम।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है 25-30 साल तक आपने जरा गुनाहों से खाली करूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, रोजा नहीं रखूंगा, मैं हिजाब की पाबंदी नहीं करूंगा, मैं फला नहीं करूंगा, मैं तो अभी गुनाह साफ करूंगी, मतलब ये नहीं क्योंकि लिमिट करते जाएं ऐसा नहीं है कि आप 25-30 साल तक आपके पहले मैं गुनाहों से पाक हो जाऊं फिर मैं इबादत की तरफ जाऊँ फिर मैं नमाज पढ़ूंगा, नहीं ये मुराद नहीं है, यानी ये मुराद अगर है तो ये गलती है ठीक है, पढ़ लेते इसको समझ में आ जाएगा। बस फुकहा ये कहते हैं कि इस्लाम क्या है शरीयत क्या है, तीन चीजें हैं यानी अखलाक अकायद अखलाक अहकाम। और अरफा ये कहते हैं कि ठीक है हम भी जिसको मानते हैं अखलाक अपनी जगह अकायद अपनी जगह और अहकाम अपनी जगह, लेकिन हम कहते हैं इसको थोड़ा सा खोलें। और अरफा ये कहते हैं जिस चीज़ को अकल तस्लीम करती है खुदा एक है, बुरहान नज़्म से दुनिया में ऑर्डर देख कर मुनज़्ज़म दुनिया देख कर हम इस नतीजे पहुँचते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला है, एक सहरा में अगर घड़ी पड़ी मिल जाए तो तसव्वुर आएगा यहाँ से कोई गुजरा है इसकी घड़ी है, घड़ी खुद बहुत बन गई देर की जरूरत बनाई नहीं, कोई अकल तस्लीम नहीं करती है, कोई है जिसने मुनज़्ज़म घड़ी बनाया है, लिहाजा जब इस घड़ी को मुनज़्ज़म कर सकता है कोई तो इस कायनात को भी मुनज़्ज़म कर सकता है, अकल तस्लीम कर रही है। और रफा ये कहते हैं सिर्फ अकल के यकीन तक इक्तफा न करो, बल्कि अकल ने जिस चीज को समझा और हजम किया है उस तक पहुंचने की कोशिश करो। और रफा का जिस यानी जो चीज अकल तस्लीम कर रही है उसको सिर्फ तस्लीम नहीं करो उस तक पहुंचने की कोशिश करो, यानी तुम्हें खुदा का नज़र नजर आ रहा है आंखों से, वो ये कहते हैं कि तुम्हें खुदा नजर आना चाहिए दिल की आंखों से, ये है रफा का। لہذا عرفا اس بات کے مدعی ہیں کہ جس چیز پہ ایمان رکھ رہے ہو، جس کا اعتقاد تمہارے اندر تو خدا ایک ہے، وہ منظم ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، تم کام ایسا کرو کہ اس خدا تک پہنچو، اس کی عرفان، اس کی حقیقت حاصل کرو. اسی طریقے سے اخلاق کے بارے میں بھی کہ اخلاق صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے عرفا کے نزدیک. صحیح، عرفا کے نزدیک اخلاق فلسفی و عملی نہیں ہے، کیونکہ ایک فلسفی اخلاق ہوتا ہے، ایک عملی اخلاق ہوتا ہے. فلسفی اخلاق وہ تھیوریٹیکل اخلاق ہے جس کی ہر ازم نے کانٹ سے لے کر روسو سے لے کر مختلف ادیان و مکاتب میں اس کی بحث کی گئی ہے، بقراط نے، سقراط نے، افلاطون نے، سب نے بحث کی اس کے بارے میں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ اخلاق فلسفی، اخلاق عملی، یعنی عملی طور بہیو اچھا کرنا، سلوک اچھا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ایبا سے بدل کرنا، یہ اخلاق عملی کہتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ انسان کی وہ سیر و سلوک عرفانی کرے، یعنی وہ صرف ظاہری جھوٹ کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ اس کے جو روح کے جو قدم ہیں وہ خدا کی راہ میں کیا کریں، آگے بڑھیں. اس کے لیے ایک اس طرح استعمال کی جاتی ہے، انشاءاللہ شاید وہ آگے آگے بھی آئے گی، اور امام خمینی نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور افاد کو پائے استدلالیہ چوبین ود پائے استدلالیہ، استدلال اور دلیل کے پاؤں جو ہیں لکڑی کے پاؤں ہوتے ہیں، بیساکی ہوتی ہے. صحیح، پائے استدلالیہ چوبین ود، یعنی لکڑی کے پاؤں سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا. وہ ایک آلہ ہے، ٹول ہے، ذریعہ، ایک وسیلہ ہے. اسی طریقے سے استدلال جو ہے وہ آپ کو ایک مقصد تک پہنچائے گا، اخلاق آپ کو ایک مقصد تک پہنچائے گا، اس کے بعد آپ نے خود ٹریول کرنا ہے. اخلاق وہ نہیں کہ جو آپ جبر کر کے اپنے اوپر کر رہے ہیں، اخلاق وہ کہلاتا ہے. شیخ مطالعہ نے فلسفہ اخلاق بڑے خوبصورت بحث کی اس پر کہ اصل فیل اخلاق ہی کسی کو آ جاتا ہے. مثلا آپ کسی فقیر کو کھانا کھلائے، یہ فیل اخلاق ہے؟ بالکل ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا یہ بد اخلاقی ہے؟ بالکل ہے. آپ سچ بول رہے ہیں، کیا یہ فعل اخلاقی ہے؟ بالکل ہے. کہتے ہیں بعض اوقات ہم جبر کر کے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام، کیا یہ فعل اخلاقی کہلائے گا؟ بالکل ہے کہلائے گا. لیکن شیخ مطالعہ کہتے ہیں اصل فعل اخلاقی وہ ہے کہ جس کے لیے آپ کی روح آپ کو آمادہ و تیار کر دیتا ہے. وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ہم نے وہی کی ہے. صحیح، فعل خیرات کی وہی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک وہی ہوگی اور پھر ان کو فیڈ کیا جائے گا، ان کو تھوپا جائے گا ان کے سروں پر، نہیں، بلکہ خود بخود ان کا ہر فعل اخلاقی ہوتا ہے، وہ اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فعل کو انجام دیا جائے. واضح ہوئی بات؟ ٹھیک ہے نا. تو اور یعنی شہید مدنی کہتے ہیں فعل اخلاقی کی جو جامع تعریف ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی کے ڈر سے جھوٹ نہیں بول رہا، ایک ہے جس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ جو اندر سے دل کہہ رہا ہے یہ اصل فعل اخلاقی کہلائے گا. وہ الا ممکن ہے کہ ایک کافر شخص ایک نیک عمل کرے تو اس کی جزا ہوگی اس کے لیے. ابھی پوری بحث ہے فلسفہ اخلاق میں، اس کو جا کے رجوع کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. فعل اخلاقی کو مفصل تعریف کی ہے، اور جتنے بھی اخلاق کے آپ کے نظریات پائے جاتے ہیں دنیا میں، اخلاق جنسی، اخلاق پرستی، اخلاق جسمانی، اخلاق فلاں، بہت ساری اخلاق بیان کیے ہیں، وہ ان سب کو انہوں نے مفصل اسٹڈی کرنے کے بعد فعل اخلاقی کی صحیح تعریف جامع تعریف بیان کی ہے. تو عرفا یہ کہتے ہیں کہ اخلاق صرف یہ کہ چند اعمال کے انجام نہیں، بلکہ فعل اخلاقی یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر جو ہے سیر و سلوک حاصل کریں، یعنی سیر و سلوک، سیر و سلوک یعنی سیر کرنا ہے خدا کی راہ میں، قدم اٹھانا ہے اللہ کی راہ میں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہی احکام شریعت کہ جس کی پابندی ہمیں عرفا میں نظر آتی ہے. ممکن ہے کہیں پر ہمیں صوفیوں میں اس کی بگڑی ہوئی شکل نظر آئے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صوفیوں میں، دیکھتے ہیں آپ کو مزاروں میں نظر آتی ہے مختلف قسم کے، آپ کو یہاں سوشل میڈیا پہ کلپ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی دلہن والی سرکار ہے، کوئی جو ناچنے والی سرکار ہے، کوئی کرنٹ والی سرکار ہے، وہ کرنٹ لگا رہا ہے، وہ جھوم رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بندروں کی طرح جو ہے وہ بانسوں میں چڑھ رہے ہیں، کوئی جب لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عجیب عجیب، یہ ہمیں بہکی ہوئی اور بگڑی ہوئی تصویریں نظر آتی ہیں. عرفا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک شریعت کا پابند رہنا چاہیے، اور حقیقی عالم وہی ہے جو شریعت کا پابند رہتا ہے. اگر وہ شریعت سے انحراف کرتا ہے, جیسے کہ بعض صوفیہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ شریعت عمل کرتے ہیں ایک مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں بس شریعت کافی ہے ہم حقیقت تک پہنچ گئے. عرفا کا مطلب یہ نہیں ہے. لہذا عرفا بھی یہ کہتے ہیں کہ شریعت طریقت حقیقت در حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ان سے جدا نہیں ہے, ان سب کی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت جو ہے شریعت کی طریقت کی حقیقت کی وہ خدا تک پہنچنا ہے, خواہ عقائد ہو خواہ احکام ہو خواہ اخلاق ہوں, یہ سب جو ہیں وہ انسانوں کو پہنچانا ہے. صحیح کہ تینوں کا بخش الگ ہے, تینوں کا کردار الگ ہے, تینوں کے اصول الگ ہیں, تینوں کی پریکٹس الگ ہے, عقائد الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ذہنی طور پر ہے لیکن اس کے اثرات عمل میں نظر آئے گا. اخلاق ذہنی طور پر ہے اس کے اثرات عمل میں نظر آئیں گے. شریعت کی پابندی ایک ظاہری ہے, اس کا اخلاق اس کا آپ کی زندگی پہ اثر نظر آنا چاہیے باطنی طور پر, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے یا ان کے الگ الگ فیز ہیں, لیکن ان کی حقیقت ایک ہی ہوئی ہے کہ انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں, انسان کو حقیقت تک پہنچاتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ عرفا کہتے ہیں کہ شریعت ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے جس کو طریقت کہتے ہیں, اور باطن کا ایک باطن ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں. بس عرفا کے نزدیک شریعت طریقت حقیقت ظاہر باطن اور باطن باطن کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں مفصل تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.